बहनों और भाइयों, मैं यानी कि गोविंद सिंह गुल एक बार फिर आपके सामने। और न जाने क्यों मेरी कुछ आदत है कि जब कभी मैं किसी मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता हूँ तो मुझे दिल में एक अजीब सी खुशी होती है, और यही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी मुस्कुराहट पर निछावर कर देना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी मोहब्बत और आपका प्यार, जो हमेशा पहले भी मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं लतीफों का सिलसिला, हम आप और खुशियों की ये रंगीन महफिल। तो दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसका बुखार आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस तरह छा रहा है कि हर इंसान इसकी गिरफ्त में है, और हर इंसान को क्रिकेट देखने का, खेलने का शौक इस कदर हो रहा है कि वो निजी जिंदगी की सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ क्रिकेट में खो जाना चाहता है। तो ये बीमारी जब हमारे बुंदेलखंड में पहुंची तो पहुंचते पहुंचते हमारे मोहल्ले में भी चली आई। छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, बड़े लोग क्रिकेट खेलते थे। एक बार मोहल्ले की महिलाओं ने फैसला किया कि क्यों ना आज हम क्रिकेट खेलें। घर के सारे काम काज छोड़कर हाथ में बैट और विकेट लेकर एक मैदान में साफ सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं। अब ये फैसला होना अभी बाकी था कि क्रिकेट का आंखों देखा हाल कौन सुनाए। तो एक बगल वाली शीला आंटी के हाथ पर जोड़कर तैयार किया कि आप आइए और हमारी महिलाओं के इस क्रिकेट का आंखों देखा हाल पब्लिक को सुनाइए। सारे मोहल्ले की महिलाएं साफ फील्ड में, बेचारे उनके पति कोई चूल्हा फूंक रहा, कोई बच्चे को दूध पिला रहा, कोई बच्चे को सूसू करा रहा, कोई घर में कपड़े धो रहा, कोई घर में बर्तन मांज रहा। महिलाएं साहब मैच कर रही और वहां चारों तरफ पब्लिक जमा। तो देखिए मैच प्रारंभ होता है और शीला आंटी बड़े ही अपने खास अंदाज में मैच का आंखों देखा हाल वहां चारों तरफ खड़े हुए दर्शकों को सुनाती हैं। मैच प्रारंभ, शीला आंटी माइक पर आई और बोलना शुरू करती हैं।
अब सभी जाने माने खिलाड़ी छोटी छोटी स्कर्ट पहन के मैदान में आ गए। दर्शकों का रुझान, दर्शकों की दिलचस्पी खिलाड़ियों में कम, हवा में उड़ते हुए स्कर्ट में ज्यादा। कुछ दर्शक मैच देखने के लिए जमीन पे गुलाटे खा रहे, समझ में नहीं आ रहा मैच देखने के लिए गुलाटे खा रहे या कुछ और देखने के लिए। राधा रेहाना सुल्ताना शीला कमला बिमला सभी खिलाड़ी मैदान में। खिलाड़ियों के मेकअप की देरी की वजह से खेल 50 मिनट की देरी से प्रारंभ हो रहा है। ओवर भी 50 की जगह 40 कर दिए। मैच प्रारंभ, पहली बॉल, पहला ओवर कसाईपुरे की रेहाना जूड़ा संभालते हुए, और ये क्या जूड़ा खुल गया भैया, जूड़े से भी एक बॉल निकली और एम्पायर डेढ़ बॉल का इशारा कर रहा। फील्डिंग में अच्छा कसाव और गली में खड़ी है लिली, लिली को गली में खड़े होने का अच्छा अनुभव। मैच हो या ना हो ये हमेशा गली में खड़ी नए नए लौंडों को आंख मारती रहती। ऑफ साइड पर है कल्पना, अगर इनका मूड हमेशा ऑफ रहता है, अगर मूड अच्छा हो भैया तो ये ऑन साइड पर खेलती, और अगर मूड ऑफ हो तो फिर ये ऑफ साइड पर खेलती। फॉरवर्ड शॉट लेग पर बबीता हमेशा शॉट पहनती और लेग दिखाती, अब जाने क्या क्या दिखाती भाई, हमें क्या करना, हम तो मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे। अजय ये क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मैच रोक दिया गया, उर्मिला का बच्चा रो रहा, उर्मिला उसे दूध पिलाने चली गई, वापसी का इंतजार। लीजिए मैच फिर चालू हो गया, स्लिप पर गुड्डी, इस बार गेंद गुड्डी की तरफ, गुड्डी गेंद की तरफ तेजी से भाग रही, भागने का अच्छा अनुभव, घर से कई बार लौंडों के साथ भाग चुकी है, ये अलग बात है कि कुछ दिनों के बाद वापस आ जाती और फिर किसी नए लड़के की तलाश करने लगती। हम विकेट के पीछे जो ही बड़ी मेहनत से विकेट कवर किए, मोहल्ले में एक साथ कईयों को लाइन मारती, कईयों के विकेट गिरा चुकी है, अच्छा अनुभव है। और लीजिए नई बैट्समैन तारा, तारा ने आते ही ऊपर उठा दिया, दर्शक खुशी से झूम उठे, तारा काफी देर तक ऊपर उठा रही और ये तारा का छक्का, गेंद को पति का सर समझकर मानने वाली तारा कईयों के छक्के छुड़ा चुकी है, कईयों के पसीने निकाल चुकी है। और मैं जब थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, कल्पना की हेयर स्टाइल बिगड़ गई, विभा की नेल पॉलिश खराब हो गई, शीला की लिपस्टिक फीकी पड़ गई, रेहाना का पाउडर पसीने में बह गया, और भैया हम भी घर पे दाल चढ़ा के आए, अगर हमारी दाल जल गई तो हमारा पति बहुत मारेगा। अब आंखों देखा हाल कोई और सुनाए ना सुनाए, हम तो अपने घर चलते हैं। नमस्ते।
हमारे यहाँ सब बुंदेलखंड में BHEL बहुत मशहूर है, काफी लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो BHEL के सामने रोड पर कुछ लोग छुट्टी के दिन खिलौने, कपड़े वगैरह, अंडरवियर, बनियान वगैरह बेचा करते हैं। तो एक बार एक आदमी ममता के अंडरवियर बेच रहा है, वहां से गांव वाला निकलता है, देखिए उनकी आपस में क्या बातें होती हैं। वो बड़े जोरों से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहा,
ममता के अंडरवियर ले लो भैया, ममता के अंडरवियर, ममता के अंडरवियर, टिकाऊ मजबूत सस्ते अंडरवियर ले लो भैया, ममता के अंडरवियर।
तो साहब हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं आनंद, बेचारे गांव के हैं, वहीं काम करते हैं, कुर्ता पहने हुए और कुर्ते को हाथों से पकड़े हुए वहां से निकले। तो अंडरवियर बेचने वाले ने उसे आवाज लगाई, अरे सुनो, अरे भाई, ए कहां जा रहा है यार?
अरे कहीं नहीं, बाजार जा रहे हैं।
अरे बाजार क्यों जा रहे हो?
वो ऐसे ही जा रहे।
वो आप ये कुर्ता क्यों पकड़े हाथ से?
अरे वो कहा है कि हम बस कुर्ता ही तो पहने हैं और कुछ नहीं पहने।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, आप ममता के अंडरवियर लीजिए, आपके लिए बहुत सस्ते और टिकाऊ है, ये लीजिए ममता का अंडरवियर।
अरे नहीं, हमको नहीं चाहिए ममता का अंडरवियर।
अरे क्या 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 बात कर रहे हैं? एक तो आप कुर्ता पहने, उसके बाद नीचे कुछ नहीं पहने, और फिर हम आपको इतना बढ़िया अंडरवियर दे रहे और आप मना कर रहे हैं?
देखिए हम कर दिए ना, हमको नहीं चाहिए ममता का अंडरवियर।
अरे भाई क्यों नहीं चाहिए यार? भैया बहुत सस्ता है।
अरे हम कह दिए नहीं चाहिए।
अरे क्यों नहीं चाहिए?
अरे जरा सोचो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुहार? अरे अगर हम ममता का अंडरवियर पहन लेंगे तो बेचारी ममता क्या पहनेगी?
हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर नकली सर्टिफिकेट लेकर या अधिक जानकारी ना होने के बाद भी अपनी दुकान खोलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे मरीजों को बड़ी परेशानी होती है। अब एक डॉक्टर साहब के एक मरीज के पेट का ऑपरेशन होना है, बेचारा मरीज वहां लेटा हुआ है अंदर और बड़े ही जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा है। डॉक्टर साहब गए, ऑपरेशन किया और जैसे ही वापस लौटे, कंपाउंडर दौड़ता हुआ आया, डॉक्टर साहब,
अरे क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया।
अरे डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन कैंची आप उसके पेट में ही भूल गए, आपने टांके लगा दी और कैंची पेट में रही, वो फिर चिल्ला रहा है। साहब डॉक्टर साहब फिर गए, दोबारा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जैसे ही लौटे, साहब कंपाउंडर फिर आ गया, डॉक्टर साहब,
अरे अब क्या हो गया?
अरे आप क्या कर रहे?
अरे मैं ऑपरेशन करके वापिस आ गया हूँ।
ऑपरेशन करके वापस आ गए, हाथ के दस्ताने उसके पेट में ही रह गए, वो फिर चिल्ला रहा है। साहब डॉक्टर साहब फिर गए, दोबारा ऑपरेशन किया, वापस लौटे, कंपाउंडर फिर दौड़ा, डॉक्टर साहब,
अबे मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, ये रही कैंची और ये रहे दस्ताने, अरे अब मैं कुछ नहीं भूला।
अरे डॉक्टर साहब, कैंची दस्ताने तो ले आए, टाके लगाना भूल गए, जल्दी चलो, बेचारा पेट पकड़े बैठा है। ऐसे डॉक्टर साहब जब किसी मरीज को देखते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक महिला डॉक्टर साहब के पास आई,
डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ कीजिए ना।
अरे हम तो करने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्या करवाना है, ऑपरेशन करवाना है?
नहीं नहीं, मेरा बेटा है ना, बहुत ज्यादा बीमार, उसका इलाज करवाना है।
अच्छा, इलाज करवाना है? हमसे अच्छा इलाज और कौन करेगा? कहाँ है तुम्हारा बेटा?
साहब उसने अपने लड़के को आवाज लगाई, लड़का वहां से चिल्लाता हुआ आया,
ओए ओए,
डॉक्टर परेशान,
देखिए ना डॉक्टर साहब, यही है मेरा बेटा। रात दिन सोते उठते बैठते ओए ओए चिल्लाता रहता है। सारा मोहल्ला परेशान है, अब तो हमारे घरों पे पत्थर फेंकने लगे।
अरे चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। कंपाउंडर, स्पेशल इंजेक्शन लगा दो।
साफ कंपाउंडर आया, लड़के को इंजेक्शन लगाया, लड़का बिल्कुल ठीक। महिला को बड़ा ताज्जुब हुआ।
डॉक्टर साहब, आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया?
अरे ओए ओए की बीमारी सारे हिंदुस्तान में फैल रही है, हमने इलू इलू का इंजेक्शन लगा दिया। ओए ओए की बीमारी, इलू इलू का इंजेक्शन ठीक हो गया। जाओ।
वहां से साहब महिला चली गई। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया आई और डॉक्टर साहब से बोली,
डॉक्टर बेटा, हमारी बहू का कुत्ता ने काट खाओ, जरा चल के देख लो।
अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब 8 बज चुके हैं और 8 बजे हमारा हॉस्पिटल बंद हो जाता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए।
अब बेटा हमें तो मालूम, कुत्ता को कौन मालूम, डील मरे को जीने काटो है। हमारी बहू बहुत पत्ता थी फड़फड़ा रही, अरे चल के देख लो, बड़ा भला है ये तुम्हारा बेटा। डॉक्टर को तो काम ही हो तो मरीज देखो।
ठीक है कंपाउंडर, हमारी अटैची लेके आओ।
कंपाउंडर अंदर गया, एक बड़ी सी अटैची लेकर आया जिसमें एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ। डॉक्टर साहब अटैची लेके उस महिला के घर पहुंचे और जिस कमरे में बहू थी उस कमरे के अंदर गए, दरवाजे बंद कर लिए और साहब 5 मिनट के बाद दरवाजे खोले पसीने में तर और महिला से बोले,
एक काम कीजिए, आपके पास हथौड़ा है।
महिला घबराई,
का बेटा, हमने इंजेक्शन की तो बहुत सुनी थी, कैंची की सुनी थी, लेकिन आज तक तुम ऐसा डॉक्टर नहीं देखो जो हथौड़ा मार के इलाज करत। अरे क्या कर रहे तुम कमरा बंद करके हमारी बहू के संग?
खामोश, अभी तुम नहीं समझती, हम तुम्हारी बहू का इलाज कर रहे हैं। हथौड़ा लेकर आओ, जल्दी करो जल्दी।
बेचारी बुढ़िया भागते भागते गई, हथौड़ा लेकर आई। डॉक्टर साहब ने हथौड़ा लिया, कमरे के अंदर दरवाजा बंद। 1/2 घंटे के बाद फिर बाहर निकले। बुढ़िया बेचारी बड़ी परेशान,
का बेटा हमारी बहू ठीक हो गई का?
अरे अभी कहां से ठीक हो गई, एक काम करो कहीं से आरी लेकर आओ।
आ कह रहा बेटा, आरी लेके आओ। अरे तुम इलाज कर रहे क्या, पोस्टमार्टम कर रहे बहू को? अरे जरा कुत्ता ने काट खाओ बेटा, तुम तो आरी लेके आओ, हथौड़ा लेके आओ। कहा कर रहे तुम, 1 घंटा से कमरा में गड़बड़ 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 करने लगे, हम समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे।
अरे सब भूल जाओ, आरी लेकर आओ आरी।
बेचारी बुढ़िया गई, आरी लेकर आई। डॉक्टर साहब फिर कमरे के अंदर दरवाजा बंद। 1 घंटे के बाद पसीना पहुंचते हुए निकले और बुढ़िया से बोले,
एक काम करो, अपनी बहू को हमारे घर लेकर आओ, वही इलाज करेंगे।
आज डॉक्टर पूरी रात कमरा के अंदर तुम जाने क्या करते रहे? आरी ले आओ, हथौड़ा ले आओ, चाकू ले आओ, छुरी ले आओ और सवेरे कह रहे के बहू को घरे लेके आओ। अरे अभी कछु इलाज के लाने बाकी रह गया का? पूरी रात तो हो गई, रात भर क्या कर रहे थे?
अरे तुम्हें क्या बताऊं, पूरी रात तो मैं सिर्फ अटैची का ताला खोलता रहा।
हमारे झांसी की सड़कें साहब बहुत प्यारी हैं, बड़े जोर शोर से बनाई जाती हैं, बड़ा हल्ला होता है, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन 1 या 2 बरसात के बाद यही सड़कें अपनी हालत पे आंसू बहाती रहती हैं और यहां से निकलने वाली सवारियों की जो हालत होती है वो तो बहुत ही बेहतरीन होती है। इन सड़कों के ऊपर जब गड्ढे बन जाते हैं और इन गड्ढों के ऊपर से कोई टेम्पो, कोई मोटर, कोई गाड़ी निकलती है तो किस तरह उछलती है और क्या हालत सवारियों की होती है। एक बार मैं एक टेम्पो पे सवारी कर रहा था, टेम्पो में बैठा हुआ था और टेम्पो में एक बहुत ही अच्छा टेप रिकॉर्डर लगा था, इस पे एक पुराना गाना आ रहा था, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। लेकिन जैसे ही टेम्पो हमारी झांसी की सड़कों से गुजरता है और गड्ढों में पहुंचता है तो देखिए उस गाने का, बहुत ही प्यारे गाने का किस तरह पोस्टमार्टम होता है। टेम्पो चला जा रहा है साहब, हम बैठे हुए हैं, गाना बज रहा है आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। तो गाना पहले अपनी बिल्कुल असली सही हालत में, उसके बाद जैसे ही टेम्पो गड्ढों में पहुंचता है, देखिए गाने की क्या हालत होती है। टेम्पो चला, गाना स्टार्ट हुआ,
आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे, आजा आजा।
और फिर जैसे ही टेम्पो गड्ढे में पहुंचा और टेम्पो ने छलांगे मारना शुरू की, उसके साथ साथ गाने की रूह भी कांपने लगी। देखिए गाना किस अंदाज में बजता है,
आजा आजा आजा
आजा आजा। अब साहब टेम्पो और ज्यादा गड्ढों में पहुंचा, यहाँ बिल्कुल सड़क खुदी हुई है, लंबी लंबी खाइयां सी बनी है, जगह जगह से सड़क कटी हुई है। तो जब टेम्पो आड़ा तिरछा होकर चला तो गाने का कुछ आलम और ही हो गया,
आजा आजा आजा।
तो ये हाल हमारे यहाँ की सड़कों का होता है और गानों का होता है। तो हमारे यहाँ पर जो टू सीटर या टेम्पो वाले साहब, वो भी सरकार से बड़े परेशान हैं। सड़कें बेकार, लाइट आती नहीं है, लेकिन दिन पे दिन टैक्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो उन्होंने अभी ज्यादा सवारियां लेना शुरू कर दिया। टू सीटर वाले ज्यादा सवारियां लेते हैं, टेम्पो वाले लेते हैं, आजकल धुआं धक्कड़ भी बहुत कुछ हो रहा है। तो हमारे झांसी शहर के अंदर जो टेम्पो और टू सीटरों की हालत है, वो मैं आपको इस गीत के जरिए पेश कर रहा हूं, जो हमारे जनाब कृष्णचंद्र शर्मा नारद जी का लिखा हुआ है, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे कवि हैं। तो लीजिए सुनिए कि हमारे झांसी में टेम्पो और टू सीटरों की क्या हालत है।
टेम्पो भोरा सो बनाए, टेम्पो भोरा सो बनाए, चार लोग आइए चार लोगन में, चार लोग आइए चार लोगन में, खचाई पाँच भर जाए टेम्पो 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 भोरा सो बनाए, टेम्पो भोरा सो बनाए। ठाकुर साहब मूचन वारे जा में बैठन आए, ठाकुर साहब मूचन वारे जा में बैठन आए, पायदान में कांच बीत गई ड्राइवर पे झर्राए, पेट्रोल को उड़े भमाका, पेट्रोल को उड़े भमाका, जीवन को हम चाहे टेम्पो 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 भोरा सो भन्ना, टेम्पो भोरा सो भन्ना। टेम्पो को मोड़ा टू सीटर एक आंख से कानो, टेम्पो को मोड़ा टू सीटर एक आंख से कानो, दो के ए बच्चे बैठा रहे ऐसो जो गर्रानो, चौराहे पे देख सिपैया, चौराहे पे देख सिपैया, चाचे पे और जाए टेम्पो 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 भोरा सो बनना, टेम्पो भोरा सो बनना, चार लोग आइए चार लोगन में, कचई पच भर जाए टेम्पो 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 भोरा सो बनना, टेम्पो भोरा सो बनना, टेम्पो भोरा सो बनना, टेम्पो भोरा सो बनना।
एक बार साहब छक्कों को मालूम पड़ा कि हमारे मोहल्ले में एक साहिबान के लड़का पैदा हुआ है, और वो साहिबान बिल्कुल दलीप कुमार के अंदाज में बोला करते थे। वैसे ये छक्कों की गलतफहमी थी, उनके यहां कुछ नहीं हुआ था, लेकिन साहब आदत के मुताबिक सारे के सारे छक्के सुबह सुबह वहां पर पहुंच जाते हैं, दरवाजे की घंटी बजाते हैं, और इससे पहले कोई बाहर निकले वो आपस में गाना बजाना शुरू कर देते हैं।
हाय हाय हसीना सवाना रुखसाना, हाय देख बड़ुए को अंदर से दरवाजा बंद करके हाय अंदर बैठा, हाय बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाय रुखसाना उठा ले ढोलक और बजा और आजा, मिलके गाते हैं। हाय कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा बड़ुआ। हाँ चल गाले गाले। हाय तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले बाल, तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले बाल। अरे अम्मा तेरी ले बलैया अबाचू में गाल तेरे। हाँ तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले बाल। ए निकल यार, अरे खोल दे। हाँ दरवाजा खोल वरना चटका दूंगी। हाँ साथ इन छक्कों के अंदर एक बगैर दांत वाला बुड्ढा छक्का भी था। बेचारा होठों से गाया करता था, आवाज कम निकलती थी, हवा ज्यादा निकलती थी। तो देखिए साहब, साथ में वो भी गा रहा है, वो बीच में गाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि वो आ गया है। हाय तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले बाल, तेरे है तेरे है तेरे साहब। थोड़ी देर के बाद दरवाजे खुले और दलीप साहब के अंदाज में बोलने वाले साहबान बड़ी जोर से चिल्लाए,
कौन है? अरे कौन है जो बार बार हमारे दरवाजे की घंटी बजा रहा है? कौन है?
हाँ हाँ चश्मा उतार के देख, हम है हम। हाँ तुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, इतने बड़े बड़े खाड़े देख तो। सदाना खाड़ी, रुखसाना खाड़ी, हसीना खाड़ी, आज देखता नहीं क्या?
बड़ी बड़ी गलत बात है ये बहुत गलत बात है कि तुम लोग बार बार हमारे दरवाजे की घंटी बजा रहे हो। किसने बजाई है दरवाजे की घंटी?
हाँ हमने बजाई। हाँ क्या कर लेगा?
शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, शर्म आना चाहिए। याद रखो कि जिनके अपने घंटे नहीं होते वो दूसरों की घंटी नहीं बजाया करते, समझे?
हाँ हम तो ये सोच के आए कि तेरे यहाँ लौंडा हुआ, पर हमने आज तक चूहे का बच्चा भी पैदा नहीं किया,
चूहे का बच्चा भी पैदा नहीं किया, समझे? अरे हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। वो जो बगल में वो जो साबिर भाई रहते हैं ना, उनके यहाँ चले जाओ, वहां पर है कुछ गड़बड़ है वहां पर।
सारे चक्कों ने साहब उठाई ढोलक और साबिर भाई के यहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही साबिर भाई बाहर निकले, उनका चेहरा देखा, सबने ढोलक बांधी और साहब वापस लौटने लगे। मैं भी वहां पर खड़ा था, मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या हुआ?
हाय भाई मत बोल मेरे को, बहन बोल बहन।
अरे मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप वापस क्यों जा रहे भाई? साबिर भाई की यहाँ तो कुछ हुआ है ना? साहब एक छक्का मेरे पास आया और कान के पास में बड़े सस्पेंस से बोला, हाय बड़े राज की बात है, बता दूं, किसी को बोलना नहीं। अरे मैंने कहा बताइए ना क्या बात है। हाँ दरअसल बात कोई खास नहीं है, बात यह है कि हम बिरादरी वालों के घर नहीं जाते। हाँ
अंग्रेजों ने हमारे देश पर कई सालों तक राज किया, तो यहाँ के लोग अंग्रेजों के प्रति अपने दिल में बड़ी नफरत रखते हैं कि इन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, तरह तरह के अत्याचार किए, कत्लेआम किया, शहीदों को फांसी दी। तो जब कभी कोई अंग्रेज यहाँ घूमने आता है और किसी हिंदुस्तानी से कोई सवाल करता है तो वो उल्टे सीधे जवाब दिया करते हैं। तो साहब एक बार एक अंग्रेज हमारे बुंदेलखंड भी आया। बुंदेलखंड में वो पहले रानी झांसी के किले के पास पहुंचता है, फिर पारक पहुंचता है, उसके बाद जब वो वहां से निकलता है फिर एक जगह और जाता है जहां पर गंगाधर राव की समाधि बनी हुई है, और एक एक करके वहां पर वो आदमियों को बुलाता है, पूछता है भाई ये क्या है, किसने बनाया, लेकिन लोग उल्टा सीधा जवाब देते हैं। बेचारा देखिए उनके जवाबों का क्या मतलब निकालता है। तो सबसे पहले वो एक आदमी को बुलाता है, उससे बातचीत करता है। उसने बुलाया और उससे बोला,
आओ एक मिनट, हमको ये बताओ कि तुम्हारा बुंदेलखंड के अंदर शरीफ आदमी का पहचान क्या होता और बदमाश आदमी का पहचान क्या होता?
देखो साहब ऐसा है कि हमारे जो बुंदेलखंड के अंदर जो शरीफ आदमी है ना,
वे बात बात पे जी हाँ बोलत, और जो बदमाश बेईमान लुच्चा लपंगा है ना, वे लोग बात बात पे हाओ हाओ ऐसे कहू
जो लोग शरीफ लोग हैं वो बात बात पे जी हाँ बोलता है, और बदमाश आदमी हाओ बोलता है, लगता है तुम बहुत शरीफ आदमी है। हाओ हाओ
बेचारा बड़ा परेशान हुआ साहब। आगे चला, रानी झांसी के किले के पास पहुंचा, एक आदमी को बुलाया,
आओ वन मिनट, तुम्हारा नाम क्या है?
हमारा नाम घसीटा है।
आओ घसीटा।
हाँ घसीटा, लेकिन आज तक किसी ने इतना नहीं घसीटा जितना तुमने घसीटा।
क्या बात है?
आओ कोई खास बात नहीं। ये क्या है?
किला है, किला दिख नहीं रहा क्या? आंखें फूट गई।
आओ किला है, किसने बनवाया?
वो साहब गुस्से में था, अंग्रेज को परेशान करना चाहता था, बड़ी गुस्से में बोला,
पता नहीं,
चला गया। अंग्रेज बड़ा खुश हुआ,
आओ इतना अच्छा किला पता नहीं ने बनवाया, आयु बड़ा अच्छा आदमी है, हम तो कभी मुलाकात हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। क्या बात है?
साहब थोड़ी आगे बढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई के पार्क के पास पहुंचा, फिर एक आदमी को बुलाया,
वन मिनट, तुम्हारा नाम क्या है?
ओ साहिब हमारा नाम गणपत राय।
आओ गणपत राय।
नहीं नहीं गणपत राय।
आओ गणपत राय।
कहा ना गणपत राय?
आओ गणपत राय, हमको नाम से क्या करना, ये पार्क किसने बनवाया?
वो भी साहब ताव खा गया,
पता नहीं।
आओ किला भी पता नहीं ने बनवाया, और पार्क भी पता नहीं ने बनवाया, ऐसा लगता तुम्हारा बुंदेलखंड के अंदर और पता नहीं ने बहुत कुछ बनवाया। आओ अच्छा आदमी है।
साहब जैसे ही वो पार्क के बाहर निकला कि एक आदमी की मैयत डेड बॉडी राम राम सत्य है चली जा रही थी कि उसने फिर एक आदमी को बुलाया,
आओ आओ वन मिनट, किसका डेड बॉडी है, कौन मर गया?
वो साहब गुस्से से बोला,
पता नहीं।
अंग्रेज परेशान,
पता नहीं मर गया। आओ अच्छा लोग दुनिया में बहुत कम जिंदा रहता, अगर जिंदा होता तो बुंदेलखंड में दो चार किला और बनवाता। क्या करें, कोई बात नहीं।
धीरे धीरे साहब अंग्रेज आगे बढ़ा तो उसने देखा हमारे बुंदेलखंड में पर्दे की प्रथा है, लोग लंबा घूंघट लेते हैं, तो जब उसने देखा कि बहुत से लंबा लंबा घूंघट लिए लोग चले आ रहे हैं, महिलाएं चली आ रही हैं, तो उसने एक आदमी को बुलाया,
वन मिनट, ये क्या है, ये लंबा लंबा लटक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग चल रहा है, चारों तरफ से लपेटा हुआ है, और क्या लपेटा, क्या व्हाट इज दिस?
बेचारा वो आदमी भी गुस्से में था और अंग्रेज से नफरत करता था, तो मजाक उड़ाने के लिए वो बोला,
देखे साहब ये हमारे बुंदेलखंड के चलते फिरते सेफ्टी गार्ड है, सेफ्टी गार्ड, कोई दुर्घटना हो जाए, बम पड़ जाए, आंधी तूफान आ जाए तो आदमी इनके अंदर घुस जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता उन्हें घर तक छोड़ाते हैं, ये है सेफ्टी गार्ड, चलते फिरते सेफ्टी गार्ड।
हाँ चलता फिरता सेफ्टी गार्ड, और तुम्हारा बुंदेलखंड में कितना अच्छा इंतजाम होता, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगा।
साहब थोड़ी देर के बाद वहां पे कर्फ्यू लग जाता है, गोलियां चलती हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं, जैसे ही भागना शुरू करते हैं अंग्रेज परेशान,
आओ ये क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, हम किधर जाएं?
सामने से एक बुढ़िया चली आ रही लंबा घूंघट लिए, अंग्रेज ने देखा और अपने आप से बोला,
आओ सेफ्टी गार्ड, आओ लगता है बहुत पुराना सेफ्टी गार्ड है, बहुत इस्तेमाल किया गया है, कैसा झुक झुक के चलता है, कोई बात ना है, हमको तो पना चाहिए, इसके अंदर घुस जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे।
जैसे ही अंग्रेज उसके अंदर घुसा, बुढ़िया ने बड़ी जोर से लात दी,
चल हट, नाच मिटे हरामी, कहां घुस रहा?
अंग्रेज बेचारा कीचड़ में गिरा और वहां पर बड़े आराम से बुढ़िया की तरफ देखते हुए बोला,
हाँ गलता हो गया, बहुत ज्यादा गलत हो गया, लगता है सेफ्टी गार्ड के अंदर कोई पायल ऐसे मौजूद था, हमको नहीं जाना चाहिए था।
आज का दौर साहब जोड़ियों का दौर है, हर इंसान अपने साथ जोड़ी बनाकर काम करना चाहता है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, शंकर जय किशन, कल्याण जी आनंद जी, तो ये जोड़ियां
काफी हिट हुई हैं, काफी नाम कमाया इन्होंने, लेकिन आज तक नेतागिरी के अंदर जोड़ी कभी नहीं आई। हमारे मोहल्ले में साहब एक जोड़ी पैदा हुई, और ऐसी जोड़ी जिसमें दो नेता एक साथ मंच पर बोला करते थे, लेकिन दोनों नेताओं के एक एक तकिया कलाम भी थे। एक नेता बात बात पर लोटा लेके बोलता और दूसरा नेता बात बात पर टांग उठा के, और जब ये दोनों किसी मंच पर बोलना शुरू करते तो बड़ा अजीब आलम होता। पब्लिक का हंसते हंसते पेट फट जाता, लेकिन नेतागिरी का शौक और जुनून इन्हें रोकता नहीं, बल्कि और भी जोश और खरोश से बोलने के लिए प्रेरित करता रहता। तो देखिए साहब, जो बात बात पे लोटा लेके बोलते हैं, उनसे अगर कभी कोई पूछे, अरे भाई साहब कहां से आ रहे, बेचारे बड़ा गुस्सा खा जाएंगे। अगर लैट्रिन से लौट रहे होंगे तो गुस्से से बोलेंगे,
बाथरूम गया था लोटा लेके, 100-100 आदमी आपस में लड़ रहा है लोटा लेके, 2 घंटे खड़ा रहा लोटा लेके, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया लोटा लेके, रास्ते में ही काम हो गया लोटा लेके, बड़ा परेशान हूँ लोटा लेके, जैसा गया था लोटा लेके वैसा ही लौटाया लोटा लेके।
और साहब दूसरे साहब जो बात बात पे टांग उठा के बोलते, उनसे अगर कोई पूछ ले, क्या भाई साहब कहां से आ रहे हो,
क्या बताऊं, तेल लेने गया था टांग उठा के, 1 घंटे खड़ा रहा टांग उठा के, जब थक गया तो वही लेट गया टांग उठा के, लोग आते रहे टांग उठा के, जाते रहे टांग उठा के, तेल नहीं मिला टांग उठा के, वापस चला आया टांग उठा के।
तो ये लोटा लेके और टांग उठा के अगर किसी मीटिंग में बोले तो देखिए क्या आलम होता है। एक बार एक मीटिंग में दोनों बोलते हैं, 2 माइक लगते हैं, एक पर लोटा लेके एक पर टांग उठा के, सामने आए, पब्लिक को देखा, बोलते भी और बीच बीच में इनका तकिया कलाम भी आता जाता है। देखिए क्या माहौल बनता है। स्टेज पर आया और शुरू हुए,
आज जब मैं सुबह आया लोटा लेके,
मैंने देखा कि कमेटी के सारे सदस्य खड़े हुए हैं टांग उठा के,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लोटा लेके,
आप सारी जिंदगी अपने अधिकारों के लिए यूं ही लड़ते रहे टांग उठा के,
आज जिसे देखो दिल्ली की तरफ भाग रहा है लोटा लेके,
कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता, घंटों खड़े रहो टांग उठा के,
सबसे पहले हमें अनुशासन में आना होगा लोटा लेके,
फिर हमारी तरक्की होगी टांग उठा के।
अब ये क्या आलम है, जहाँ लिखा सफाई से रहो वहीं पहुँच गए लोटा लेके,
जहाँ लिखा पेशाब करना मना है वहीं खड़े हो गए टांग उठा के,
आज हमारा जुलूस निकलेगा लोटा लेके,
कमेटी के अध्यक्ष आगे आगे चलेंगे टांग उठा के, और हम सभी उनका साथ देंगे पीछे पीछे लोटा लेके, इसी तरह हमारी तरक्की होगी टांग उठा के टांग उठा के टांग उठा के।
दुनिया में कंजूस तो बहुत से होते हैं, लेकिन एक साहब बहुत ज्यादा कंजूस थे, इतने ज्यादा कि बगैर मतलब के वो किसी को गालियां भी नहीं दिया करते। एक बार अनाथालय वाले उनके पास आए कि भाई कुछ चंदा दीजिए, तो उन्होंने बड़े प्यार से अनाथालय वालों को देखा और बोले, देखो भाई चंदा मंदा तो मेरे पास नहीं है, अब तुम लोग आ ही गए हो तो एक काम करो, मेरी बीबी और 12 बच्चे ले जाओ, अनाथालय में और क्या चाहिए। एक बार साहब वहां एक कुआ खोदा गया, लोग फिर चंदा मांगने आए, भाई साहब कुआ खोद रहे हैं पानी के लिए, कोई चंदा वगैरह दीजिए। अरे सुनती हो, अरे एक बाल्टी पानी दे दो यार इन लोगों को, यार ले लो भैया ले लो। तो साहब ये कंजूसी का आलम। तो एक बार साहब जब वो मरने लगे, आखिरी सांसें ले रहे थे, लेटे लेटे उन्होंने देखा कि घर के सारे लोग उनके चारों तरफ खड़े हुए हैं, तो बड़े प्यार से साहब उन्होंने अपने चारों तरफ खड़े हुए लोगों को देखा और बोले, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है,
आपके सर के पास है,
और मेरा छोटा बेटा कहाँ है,
आपके पैरों के पास है,
और मेरा नौकर कहाँ गया,
आपकी दवा लेने गया।
क्या कह रही, सारे के सारे यही मर रहे हो, अरे दुकान कौन खोलेगा,
तुम लोग मरवाओगे हमें, जाओ कोई दुकान तो खोलो।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए किसी को नहीं भेजा।
अरे तबीयत गई भाड़ में, क्यों नुकसान करवा रही हो, एक काम करना, मेरे मरने के बाद मेरा मकान मेरी बेटी को दे देना।
नहीं वो तो मैं अपने दामाद को दूंगी।
बगीचा मेरे प्यारे माली को दे देना।
वो तो मैं अपने भाई को दूंगी।
और ये जो कार है ना मेरे छोटे बेटे को दे देना।
नहीं वो तो मैं अपने बड़े बेटे को दूंगी।
अरे क्या कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा मैं मर रहा हूँ या तू मर रही है। अरे न जाने क्यों चैन से मरने भी नहीं देती। एक काम करना, मेरे मरने के बाद सुपर साउंड वाले मास्टर जी से शादी कर लेना।
क्यों, क्या वो आपके दोस्त हैं?
अरे नहीं, मुझे उससे बदला लेना है। मैं तो बहुत परेशान हुआ हूँ तेरी वजह से कम वो भी तो परेशान हो, बहुत रिकॉर्डिंग करता है। ये कौन आ रहा, डॉक्टर को बुलाया क्या? अरे क्यों खामोखा खर्चा करवा रही है, मना किया था कि डॉक्टर को मत बुलाना, क्यों बुलाया?
डॉक्टर नहीं है, बीमा वाले को बुलाया था ताकि उसे विश्वास हो जाए कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, अपनी मौत मर रहे हो, समझे?
समझ गया। उस दिन जब मुझे जरा सी खांसी आई तब भी मैं समझा तूने डॉक्टर को ही बुलाया होगा, लेकिन वो भी यही बीमा वाला था। पहले बीमा करने आया था, अब कमबख्त रकम देने आया है। क्यों, एक बात सुन ले, मेरे मरने के बाद एक पैसा भी खर्च नहीं करना मेरी मैयत पे, समझी? ना किसी को बुलवाना, ना तेरे ही करना, मरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तुझे कसम है। साहब थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें जरा सी बंद हुई, घर वालों को लगा कि बेचारे चल बसे। अब आपस में साहब बातें शुरू हुई।
बेटा ये तो चले गए, कुछ तो करना ही पड़ेगा।
मम्मी पापा कहते थे ना कि खर्च नहीं करना।
हाँ बेटा क्या करें बताओ ना।
मम्मी एक काम करते हैं, एक ठेला लाते हैं, पापा को गठरिया बना के ठेले में पटकते हैं, फिर ले जाके नोट गाट के पुल से फेंक देंगे।
नहीं बेटा तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ठेले वाले को भी तो पैसे देना पड़ेंगे, ये तो कभी किसी को एक पैसा भी नहीं देते थे।
तो मम्मी बताओ ना क्या करें।
छोटा वाला बेटा बोला,
ए मम्मी मम्मी वो अपनी साइकिल रखी है ना, एक काम करते हैं पुरानी साइकिल को उतारते हैं, पापा को बोरे में बंद करके बांध के पीछे साइकिल पर लटका देंगे और ले जाके फेंक देंगे।
बात तो ठीक है भैया, लेकिन वो साइकिल तो पंचर है।
तो क्या हुआ, पंचर सुधरवाने में तो 4 आने लगेंगे, 4 आने में पंचर ठीक करवा के पापा को अभी लेके जाते हैं।
जैसे ही लड़की ने उतारी साइकिल, बाप ने आंखें खोली और सबको गुस्से से देखा और बोला, समझ गया, अरे समझ गया, तुम लोग मुझे चैन से नहीं मरने दोगे, खर्च करके रहोगे। अरे एक काम करो, ले आओ मेरी चप्पलें कहाँ हैं, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं खुद चल के चला जाऊंगा कब्रिस्तान, जाके लेट जाऊंगा, लेकिन खर्चा नहीं करने दूंगा। हमारे बुंदेलखंड के अंदर साहब बड़े भोले भाले लोग होते हैं। एक बार एक ट्रेन के अंदर एक महिला और उसका पति सफर कर रहे हैं, साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। तो छोटे से बच्चे को बाथरूम सूसू लगती है, तो महिला अपने पति से बोली,
सुनो
का है
जब मोड़ा पेशाब करने, एक काम करो जा पेशाब करवा के ले आओ।
अब हम तो पहली बार आए गाड़ी में आए, हमें कहा मालूम के कितने का होते, अब हम कहा करें बताओ, ये काम का है नहीं कर रहे, तो सीट के नेचे घुसेड़ दो मोड़ा, चुपचाप करवा लो, को देख रहा
तो मैं तो कछ दिखात नहीं है, हमारी बदनामी करवा भी बतले का। अरे बगल में चले जाओ सामने की तरफ, बगल में एक छोटो सो कमरा सो हुई है, बाप दरवाजा खोल के अंदर जाइयो, ओते ही करवा लियो।
तब तेला का ने कई मोह से हां चबरिया काय हो रही, ले मोड़ा आ जा बेटा, कल 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 कल। साहब उन्होंने बच्चे को लिया बाथरूम करवाने को ले गए, जब बच्चे को वापस लाए तो बच्चे का पूरा पेंट गीला, महिला परेशान,
काय जो तुमने क्या करो, ऐसे मोड़ा को पेशाब करवाई, देखो तुम्हारा पूरा पेंट खराब होगा, तुम जिंदगी में कछु नहीं कर सका।
का तुमसे ब्याह करके का हमने छोटा काम करो, जब तुम्हें बर्दाश्त कर रहे तो बड़े बड़े काम कर ले।
अरे रहन दो, ये देखो तो पूरा पेंट खराब होगा, अरे तुमने बात पेशाब का नहीं करवाई।
पेशाब नहीं करवाई तो फिर पेंट में कहां से आ गई,
तब पेंट खराब का हो, कम से कम पेंट खोल लेते।
देखो हम नियम के बहुत पक्के आदमी हैं, हाँ हम जैसे ही उठे मोड़ा लेके पहुंचे सोते बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखो के शरीर को कोई हिस्सा बाहर ना निकारे, सो हमने पेंट ही में करवा ली।
दुनिया में साहब पुरानी यादों से प्यार किसे नहीं होता, हर इंसान जिंदगी की पुरानी यादों को हमेशा अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में संजो कर रखना चाहता है, और जब कभी कभी यादों की लहर उठती है और वो यादें जवान होती हैं तो इंसान एक अजीब से माहौल में चला जाता है। तो एक बार एक 70-80 साल के बुढ़े और बुढ़िया अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं और पहली सुहागरात की यादों को ताजा करते हैं, लेकिन एक जगह एक अड़चन पैदा हो जाती है। उम्र के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है। तो देखिए साहब, वो अड़चन क्या होती है। शादी की सालगिरह है, बुड्ढे ने बुढ़िया से कहा,
सुनो आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है, जरा पहले वाली साड़ी पहन के आओ जो तुमने उस दिन पहनी थी।
बेचारी बुढ़िया भी बड़ी खुश थी।
अरे प्राणनाथ, आज तो हमारा दिल बड़ी उछाले मार रहा, आज तो दिल में घंटियां सी बज रही। अरे मैं वही साड़ी पहन के आती जो मैंने पहली सुहाग रात को पहनी थी। आज तो हम पुरानी यादें ताजा करेंगे।
वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे मेरे बुढ़ापे के सहारे, जाओ जाओ वो अलमारी से निकालो वो साड़ी।
अब पुरानी साड़ी है, 7 साल हो गए, जगह जगह से फट गई।
तो क्या हुआ, गर्मी भी तो बहुत है, समझ लेना खिड़कियां है, हवा आती जाती रहेगी, पहन लो पहन लो।
साहब बुढ़िया साड़ी पहन के आई, दोनों पलंग पर बैठे। बुढ़िया बुढ़े से बोली,
प्राणनाथ आज मुझे उसी दिन की तरह अपने ढीले ढाले दुबले पतले हड्डी भरे हाथों से अपने करीब खींच लो।
अभी खींचता हूँ जाने मन, चिंता नहीं करो।
और प्राणनाथ एक बार फिर मुझे अपने सुकड़े हुए सीने से ऐसे ही लिपटा लो जैसे उस दिन लिपटाया था।
अरे चिंता नहीं करो, वैसे रह रह के खांसी आ रही है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने गले से जरूर लगाऊंगा, पुरानी यादें ताजा करेंगे।
और एक एक काम और करो ना, आज मुझे उसकी प्यार भरी नजर से देखो जैसा पहले रात में देखा था।
अब रुको जरा, मैं चश्मा लगा लूं। हाँ कहाँ बैठी हो? हाँ ठीक है, अभी तक तो मैं टटोल के महसूस कर रहा था, अब मुझे पता चला कि यहाँ बैठी हो। अरे जरा मेरे पास आ जाओ, तभी तो मजा आएगा।
और एक काम और करो ना।
क्या है बोलो।
मेरे हाथों को ऐसे ही काटो ना जैसा पहली रात को काटा था।
सब बुढ़ा उठ के जाने लगा। बुढ़िया परेशान,
कहाँ जा रहे हो मुझ बुढ़िया को अकेला अधूरा छोड़ के ऐसे ही चले जाओगे क्या? अरे मेरे हाथ को काटो ना जैसे पहले काटा था।
अरे प्राणेश्वरी, तुम्हारे हाथ को काटना है?
हाँ हाँ, हाथ को ही तो काटना है।
अरे कम वक्त कम से कम दांतों का सैर तो उठा ले आओ, क्या मसूरों से काटूंगा?
सब नौकरी पेशा आदमी अगर रिटायर हो जाए तो उसे अपनी नौकरी से बड़ा प्यार होता है। बहुत से रेलवे के ऐसे लोग जो रेलवे में नौकरी करते हैं लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो यहाँ वहाँ प्राइवेट काम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि काम करने वाले आदमी को खाली बैठना पसंद नहीं आता। अक्सर देखा गया है रिटायर होने के बाद आदमी एकदम दुबला हो जाता है, घर पे इज्जत कम हो जाती है, जो पैसा वगैरह फंड का मिलता है घर वाले चीत चीत कर सारा पैसा खत्म कर देते हैं, घर में उनकी जो पहले वैल्यू थी वो नहीं रहती। तो एक मास्टर साहब जो सारी जिंदगी पढ़ाते रहे, रिटायर हो जाते हैं लेकिन पढ़ाने का शौक नहीं गया, तो कुछ बच्चों को मोहल्ले के इकट्ठा करके एक आम के पेड़ के नीचे बैठा देते हैं। अब वहां ना उन्हें मारने के लिए कुछ है, ना डंडा है, ना मुर्गा बना सकते, ना टेबल पर खड़ा कर सकते, टेबल है ही नहीं, तो क्या करें? तो बच्चों को जब सजा देना होती तो बच्चों से कहते, बेटा बाहर निकलो, पेड़ पे चढ़ जाओ, डाली में टांगे फंसाओ और मुंडी नीचे करके आम की तरह लटको। तो देखिए पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और जब बच्चे जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें ऊपर आम की तरह लटका देते हैं। फिर बाद में एक बच्चा डाल से चिपक जाता है, एक बड़ी जोर से लहरा रहा है, एक बच्चा नीचे गिर जाता है, तो देखिए वो लोग क्या जवाब देते हैं अपनी इन हरकतों का। तो मास्टर साहब बच्चों की तरफ देखते हैं, पहली पहली बार क्लास लगी है, बच्चों को देखा और बोले,
देखो बेटे हम बहुत पुराने जमाने के मास्टर साहब हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका बड़ा अलग है। हम ऐसे नहीं पढ़ाते जैसे आजकल के मास्टर पढ़ाते हैं लौंडे लपाड़े, ये क्या जाने। तो सबसे पहले भाई इस क्लास का सबसे बेवकूफ लड़का खड़ा हो जाए, हम देखना चाहते हैं क्लास में अकलमंद कौन है और बेवकूफ कौन है। तो इस क्लास का सबसे बेवकूफ लड़का खड़ा हो जाए।
5 मिनट के बाद सब एक बच्चा खड़ा हो गया।
अच्छा तो आप इस क्लास में सबसे बेवकूफ लड़के हैं।
बोले नहीं साहब, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे। हमने तो जी क्या फायदा, मास्टर अकेले खड़े बेवकूफ की तरह, तो हम तो आपका साथ देने के लिए खड़े हो गए।
अरे तो इसका मतलब कि हम बेवकूफ हैं। निकलिए बाहर, निकलिए, चलिए पेड़ के ऊपर टांगे बसाइए और लटकिए आम की तरह। चलिए चलिए भाई, हम तो ऐसी सजा देती है। चलो चलो ऊपर लटको। हाँ ठीक है। हाँ तो साहब, हाँ, बेटा तू खड़ा हो। तेरे बारे में तो मैं बॉस शिकायत सुन रहा हूँ कि तू लड़कियों का चक्का लगाता है, सीटियां बजाता है, ऊधम करता है। देख बेटा, लड़कियों का चक्कर लगाना बंद कर, हर लड़की को अपनी बहन समझा कर। नहीं समझा कर कोई बात नहीं, लेकिन हर लड़की को अपनी माँ समझा कर।
माँ नहीं समझ सकते
क्या भाई? अब क्यों नहीं समझ सकते साहब आप माँ? अरे भाई हर लड़की को माँ समझा करे, आपका चक्कर लगाना खत्म हो जाएगा।
नहीं साहब आप समझो, अगर हर लड़की को हम माँ समझेंगे तो हमारा तो चक्कर लगाना बंद हो जाएगा, हमारे बाप का चक्कर लगाना चालू नहीं हो जाएगा। आप हमारा तो करेक्टर सुधारना चाह रहे हो, बाप का बिगाड़ना चाह रहे हो।
अबे बेकार की बात मत कीजिए, आप मास्टर से मुंह चलाते हो, हैं? कलयुगी स्टूडेंट हो, निकलो बाहर, चढ़ जाओ पेड़ के ऊपर, लड़को बस। ठीक है, बिल्कुल आम की तरह। हाँ ठीक है। हाँ तो भाई एक सवाल है, बदनसीबी और दुर्घटना में क्या फर्क होता है? बदनसीबी और दुर्घटना में क्या फर्क होता है? हाँ बे टकले, अबे सर क्यों खुजा रहे बे, खड़ा हो। बदनसीबी दुर्घटना में क्या फर्क होता है?
अरे मसाब,
अरे बेटा बटा बटा बटा, बदनसीबी और दुर्घटना में अंदर बता।
मसाब दुर्घटना तो ऐसा के जे आम का पेड़ गिर पड़े।
अच्छा शाबाश शाबाश, दुर्घटना मां साहब आम का पेड़ गिर पड़े।
और साहब बदनसीबी साहब के आप बच जाओ।
क्या कह रहा? अबे मुझे मार रहा है बे, निकल बाहर, चल जा ऊपर, चल टांगे बजा, लटक लटक। हाँ बेटा तुम खड़ा हो यार, तुम खड़ा हो बेटा, पीछे जे हाथ में पट्टी क्यों बांधे, पट्टी क्यों बांधे?
मतलब आपने मरवा दिया साहब।
मैंने मरवा दिया?
कल आप रस्ते में मिले थे, आपने कहा था ना कि हमेशा मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो। कल हम एक पहलवान की कुश्ती देखने गए, एक पहलवान हार गया, वो बगल से निकला, हम उसे देख के मुस्कुरा दिए।
अच्छा फिर क्या हुआ?
उन्होंने कहा था मास्टर फिर अस्पताल में आँख खुली, बहुत मारा उसने। मास्टर ऐसा मत शिकायत करे।
अबे तू मुझे पढ़ा रहे है? मुझे शिका रहे है? निकल बाहर, चल टांगे बसा, लटक लटक जल्दी। हाँ अब बेटा ये बताओ कि एक मुहावरा उसका अर्थ क्या होता है? नीम हकीम खतरा है जान, नीम हकीम खतरा है जान। एक लड़का पीछे खड़ा हुआ,
मां साहब हम बताएं।
शाबाश, नीम हकीम खतरा है जान।
मां साहब नीम वाले हकीम को जान का खतरा
है। अबे क्या कह रहा बे तू?
हाँ साहब, नीम हकीम खतरा है जान, नीम वाले हकीम को जान का खतरा।
अबे तेरी जान खतरे में आ गई, चल निकल बेटे, आजा 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 भागे, आजा आजा। अबे कलयुगी औलादो कुछ नहीं जानते, चढ़ जाओ, फंसाओ टांगे, लटको, चलो। हाँ बेटा अब तुम लोग एक बात सुनो, हमारे कुर्ते पे निबंध लिखो और जो भी समझ में ना आए अंग्रेजी में उसके माने हमसे पूछ लेना। निबंध ऐसा हो जैसे हमारा कुर्ता, देख रहे हो ना? बिल्कुल ऐसा।
मास्टर बिल्कुल आपके कुर्ते की तरह,
बिल्कुल हमारे कुर्ते की तरह,
जैसा आपका कुर्ता है जिस हालत में है वैसा ही।
बिल्कुल शाबाश शाबाश, लिखो।
लड़कों ने साहब निबंध लिखना शुरू किया, अंग्रेजी के कुछ सब लड़कों को नहीं आए, एक खड़ा हुआ,
मास्टर बिल्कुल आपके कुर्ते की तरह लिखना।
बिल्कुल हमारे कुर्ते की तरह।
मास्टर
मेला कुचेला को अंग्रेजी में क्या कहते? अबे अबे क्या कह रहा? मेरा कुर्ता मेला कुचेला? नहीं मासाब, आपने कहा ना कि जैसा कुर्ता वैसा लेको।
हाँ तो क्या हुआ?
तो मेला कुचेला को अंग्रेजी में क्या कहते?
अबे वाह निकल, चल लटक लटक।
साले बच्चा और खड़ा हुआ।
कहा मास्टर?
हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा है?
मास्टर फटे फटाए को अंग्रेजी में क्या कहते?
अरे मेला कुचेला फटा फटाया।
एक और खड़ा हो गया। मास्टर एक छोटा सा सवाल है।
हाँ बेटा बोलो।
दूसरे से मांगा हुआ को अंग्रेजी?
अबे तुम लोग क्या कर रहे यार, मेला कुचेला फटा फटाया दूसरे से मांगा हुआ। निकलो तीनों बार, चल जाओ टांगे फसाओ, चलो लटको लटको।
थोड़ी देर के बाद साहब उन्होंने देखा कि एक बच्चा बड़ी जोरों से लहरा रहा, एक डाल से चिपका एक नीचे गिर गया। तो जो लहरा रहा था उससे बोले,
हाँ भाई क्या बात है भाई, क्या बात है, हैं क्या कर रहे हो जोर से हिल रहे हो?
अरे मास्टर साहब आम है आम।
हाँ ठीक है, तो क्या हुआ?
मास्टर साहब ऐसा है कि हवा चल रही तो लहरा रहा है डाल पे लटके।
लहराओ लहराओ बेटा लहराओ, लेकिन लटके रहो। तुझे क्या हुआ बे, तू चिपका क्यों है?
साहब समझते ही नहीं हो, हवा चल रही तुझे लहरा रहे।
हाँ हाँ
हम में कीड़े पड़ गए तो हम सुकड़ गए।
सुकड़ जाओ मर जाओ, लेकिन वही लटको। अबे तू नीचे क्यों गिरा, तू नीचे क्यों गिरा?
देखो मास्टर साहब हवा चल रही तो वे लहरा रहे, उनमें कीड़ा पड़ गए वे सुकड़ गए, हम तो पक गए सो टपक गए।
बच्चे साहब बड़े शरारती होते हैं, लेकिन मासूम बच्चों की शरारतें भी दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन कभी कभी जब माँ बाप किसी बच्चे की शरारत या गलती पर ज्यादा पर्दा डालते हैं तो उसकी ये गलतियां आगे चल के बड़ा नुकसान देती हैं। हमारे मोहल्ले में साहब एक बच्चा बड़ा शरारती, लेकिन उसकी माँ जब कभी कोई वो गलती करता या मोहल्ले वाले शिकायत करते उसकी गलती पर पर्दा डाल देती और ये कहती कि बच्चा है पागल है। तो देखिए साहब ये हादसे आहिस्ता आहिस्ता इतने बढ़ जाते हैं कि मोहल्ले के लोग परेशान हो जाते हैं। और क्या आलम होता है, माँ बैठी है, एक महिला आई गुस्से से बोली,
भोपाल वाली, अरे ओ भोपाल वाली जरा बाहर निकल के आ, जब पालना नहीं आता तो क्यों लोंडे पैदा करने का शौक पाल लेती है, बाहर निकल के आ बाहर।
बेचारी घबराते हुए बाहर आई।
अरे ज्यादा लगाम दो अपनी जवान को वरना मुंह नोच लूंगी। क्या किया मेरे लड़के ने, क्यों चिल्ला रही हो?
लगाम लगा अपने लौंडे को, मेरे आदमी के दांतों की नकली बत्ती सी लेकर भाग गया, बेचारे खाना भी नहीं खा पा रहे, ऐसे बोलते जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, आधे शब्द तो मुंह में रह जाते आधे बाहर निकलते हैं, समझा के रखना उसको।
अरे देखो बेटा बच्चा है पागल है, समझा देंगे।
अब तो आप जो भी आता यही बातचीत। एक महिला और आई और जैसे ही उसने भोपाल वाली को देखा बड़ी गुस्से से बोली,
अरे भोपाल वाली अपने लौंडे को संभाल के रख। हाँ क्या बेटा तेरा क्या ले गया? अरे मेरी सलवार ले गया उतार के। हाँ सलवार ले गया, और बेटा तेरे को पता भी नहीं चला क्या करेगा वो सलवार का? पता कैसे चलता, छत पर सूख रही थी लेके भाग गया, और क्या करेगा? अरे मेरी सलवार के दोनों तरफ डोर बांध के हवा भर के पहुंच बांध के अंदर तेरा लौंडा तैरना सीख रहा है, जरा समझा लेना उसे। बाप के पजामे में हवा भरे, तेरे पेटी कोट में हवा भरे, मेरी सलवार में हवा भरेगा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी।
साहब माँ ने फिर उसकी गलती को बचाया,
अरे पागल है बेटा बच्चा है, समझा दूंगी। ठीक है समझा देना।
जैसे ही वो वहां से निकली एक साहब और आ गए,
ए भोपाल वाली जरा इधर आओ, जरा लौंडे को अपने पास ही रखा करे, आजकल बहुत हाथ पैर फैला रहा है।
अब बेटा तेरा क्या ले गया?
अरे मेरा क्या ले गया, भोपाल वाली सुबह सुबह आया मेरी छड़ी और चश्मा ले गया।
अरे बेटा छड़ी और चश्मा ले गया तो क्या हो गया?
ले के रही क्या हो गया, अरे मैं चश्मे के बगैर बिल्कुल सूरदास हो गया, गलती से जलते हुए तवे पे बैठ गया, मेरी तो डबल लोटी सिक गई, और तू कह रही क्या हो गया, सुबह चाय की जगह दबात उठाकर स्याही पी गया।
अरे बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है पागल है।
अरे कैसे हो जाता, सुबह मैं अपनी बीवी को लेके बाजार गया बगैर चश्मे के, गलती से मैंने पहलवान की बीवी का हाथ पकड़ लिया।
अरे बेटा फिर क्या हुआ?
होना क्या था, अस्पताल में आँख खुली, इतना मारा उसने, देखो समझा के रखना उसे।
अब बेटा पागल है,
देखो देखो बेकार की बातें मत करना, तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ता, तुम्हारी आंखें नहीं बोलता, तुम्हारा सिर नहीं बोलता, तुम्हें नहीं मारता, तुम्हारी साड़ी लेके नहीं भागता, पागल है पागल है। साहब बुढ़िया गुस्से से बोली,
देखा बेटा पागल है लेकिन इतना पागल नहीं है। हाँ।
आज की दुनिया में साहब पूजा पाठ सभी करते हैं, भगवान की पूजा करने से मन को बड़ी शांति मिलती है, और कहते हैं कि धर्म की आग से दिल के चिराग जलते हैं, धर्म की आग से दिल के चिराग जलते हैं, भटकने वाले इसकी रोशनी में चलते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की पूजा करके बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी उनमें लिखी हुई बातों पर अमल ना करें तो हमारी पूजा बेकार हो जाती है। एक साहब हैं, रात दिन पूजा करते हैं लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो ईश्वर को अच्छा लगे। तो देखिए साहब, हाथ में घंटी लेके राम राम करते रहेंगे लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल पूजा के विपरीत हैं। एक दुकान भी है उनकी, सुबह सुबह नौकर को बुलाएंगे,
अरे रामू आया मालिक, अरे शहद में गुड़ मिला दिया मालिक, अरे घी में तेल मिला दिया मालिक, अरे तंबाकू में घास मिला दिया मालिक, अरे गरम मसाले में घोड़े की रीत मिला दी मालिक, चल चल मंदिर का टाइम हो रहा है, पूजा करके आते हैं।
अब साहब ये आलम जब चल रहा हो तो ये साहब जब सुबह सुबह पूजा करते तो मुंह में राम राम है लेकिन बातें कुछ और हैं,
राम 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 राम। अरे सुनती हो?
क्या है?
ये नौकर हमारी चमचे चढ़ा कर ले गया।
कौन सी चमचे?
अरे वही जो हम चांदनी होटल से चढ़ा कर लाए थे। राम राम राम, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले कोई, और जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई, राम 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 राम।
साहब थोड़ी देर में दूध वाला आता है, अरे दूध ले लो।
बड़ा अजीब दूध वाला है, कल सुबह सर्दी में जब मैं तुम्हारा साल पहनकर दूध लेने चला गया तो पहले उसने मुझे दूध दिया, फिर मुझे गले से लगाया और फिर मेरा चुम्मा ले लिया, राम 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 राम।
उसकी गलती नहीं है, वो समझा होगा कि मैं हूँ, अब इन्हें कौन समझाए।
साहब थोड़ी देर के बाद भिखारी,
दे भगवान के नाम पर, राम 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 राम। अरे भैया कौन है? चलो चलो दीदी घर पे नहीं है।
साहब भीख मांगने आए, बीबी मांगने थोड़े का है,
राम राम राम। अरे यहाँ कोई धर्मशाला है क्या? जाओ जाओ कुछ नहीं है, राम राम राम। रहमन बेनर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, और उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत ना आए, राम 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 राम।
अजी सुनो जी, राम दीन आया है।
साहब एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है, छोटी जात का है।
सुनो जी राम दीन आया है।
राम राम। अरे वही बाहर बैठा लो, ये नीच जात वालों को अंदर मत बुलाया करे, राम 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 राम। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे तो हर को होई, राम राम राम। पूजा में चले आते हैं बीच में विघ्न डालने के लिए, बाहर बैठा लो बाहर। क्या कह रहा है?
आपके बचपन का मित्र है, परेशान है, 10 रुपए मांगने आया है।
राम राम। एक काम करो, उससे कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, समझी? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और एक काम करो, 10 रुपए मांग रहा भगा दो, और हाँ अपने कुत्ते के लिए 20 रुपए के बिस्कुट मंगा लेना। ठीक है ठीक है, राम राम। अरे देखो देखो ये कुत्ता मेरी पंजीरी खा रहा है, अरे हटाओ। और ये पप्पू को संभालो, पप्पू को मेरी तौलिया खींच रहा है।
अरे मैं अभी अंदर आती हूँ।
अरे काम करो, अंदर मत आना, वो तौलिया लेके भाग गया। अरे अंदर मत आना, अब तो मैं बिल्कुल पैदा होने वाली अवस्था में खड़ा हूँ, राम 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 राम।